मैं बचपन से आज़ादी पसंद था, दबाव नहीं सह सकता था, खास तौर से वह दबाव जिसकी वजह न मिलती हो। एक घटना अप्रासंगिक न होगी, कहूँ। मैं 8 साल का था। पिताजी जनेऊ करने गांव गए थे। गांव के तालुकदार पंडित भगवान दीन जी दुबे थे। उन्होंने एक पतुरिया बिठाई थी, उससे एक लड़की और 3 लड़के हुए थे। जबकि बात है तब पंडित भगवान दीन जी गुजर चुके थे। तालुका उनकी धर्म पत्नी से पैदा हुए पुत्र के नाम था। एकाएक मर गए थे, इसलिए पतुरिया को और उससे पैदा हुए लड़कों को अचल संपत्ति कुछ नहीं दे जा सके थे। बाद में वसूली में पतुरिया के लड़के अड़चन डालते थे, इसलिए उनके अधिकारी भाई ने खाने के लिए उन्हें कुछ बागात और माथहत खेत दिए थे। मज़े में गुजर होता था। पतुरिया थी, उसके लड़कों के नाम थे शमशेर बहादुर, जंग बहादुर, फतेह बहादुर और लड़की का नाम था परागा। सबसे छोटे फतेह बहादुर मुझसे 8 साल बड़े थे। चौधरी पंडित भगवान दीन जी ने सबसे बड़े शमशेर बहादुर को बड़े प्रयत्न से शिक्षा दिलाई थी। मैंने उनका सितार बाद में जीवन में सुना है। वह वाक्य प्रशंसा के साथ मुझे अब तक याद है। शमशेर का उन्होंने जनेऊ भी किया था और कहते हैं जनेऊ भोर के ब्रह्म भोज में अपने तालुकेदारी के और प्रभाव में आए और ब्राह्मणों को आमंत्रित करके खिलाया भी था। इसके बाद शमशेर का एक विवाह भी किया था। लड़की खालिस ब्राह्मण घर की नहीं, बाला ब्राह्मण विधवा मिली, उससे किया। तब से वह परिवार अपने को ब्राह्मण समझता था। ज़रूरत पड़ने पर ये लोग शमशेर बहादुर दुबे, जंग बहादुर दुबे लिखकर सही करते हैं। अपनी माँ पतुरिया को उसी तरह भोजन देते थे जैसे एक हिंदू यवनी को देता। इतने पर भी तालुकेदार साहब की आंखें मुनने के साथ साथ गांव के लोगों ने इनकी तरफ से मुंह फेर लिया। इनके यहाँ का पान पानी गांव तथा गवेड़ के चारों ओर बात की बात में बंद ही हो गया। पैराग्राफ चेंज। जब मैं गया तब ये इसी अचल व्यवस्था में थे। प्रतिशोध की ताड़ना से इन्होंने गांव तथा गवेड़ के हर घर का इतिहास कंठाग्र कर रखा था और अधिकारी अनधिकारी जो भी इनसे भली तरह बातें करता था उसे घेर कर घंटों सुनाते रहते थे। ". रामचरण की बेवा लड़की के लखू पासी का हम्मल रह गया था। शिव प्रसाद मिसिर की बहन 20 साल की ब्याही न होने की वजह से लक्ष्मण लोध के साथ भाग गई। राम दुलारे तिवारी अपने छोटे भाई की बेवा स्त्री को बैठाले है। सुंदर सिंह का लड़का पलटन में था, ससुर ने पुतोहू के हमल कर दिया। बात फैल गई, थानेदार आए, फिर रुपया देकर दबाया और पुतोहू को बेटे के पास लेकर चले कहकर कलकत्ता। जाने कहाँ पहुँचे, वहाँ लड़का होने पर उसे मारकर पुतोहू को बेटे के पास ले गए। कहा संग्रहणी हो गई थी, कलकत्ता इलाज कराने गए थे। ". गांव आने पर इसी खानदान का मुझ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यही मुझे आदर्श आदमी नज़र आए। चेहरे मोहरे के, बातचीत के, उठक बैठक के। तब मेरा जनेऊ नहीं हुआ था, इसलिए खान पान की रोकथाम न थी। पतुरिया मुझसे स्नेह करती थी, खिलाती थी और लतीफे सुनाती थी। नए ढंग से कुछ दादरे और गजलें सिखाई थी। एक दिन उनके छोटे लड़के ने, जिनका मुझ पर ज़्यादा प्रभाव था, कहा तुम्हारे बड़े चाचा हमारे यहाँ नौकर थे, हमारे घोड़े भी उनका हाथ काट कर बेकाम कर दिया था। तब हमने माफी दी थी। वह जमीन आज भी तुम्हारी चची जुताया करती है। यह बात सच है, लेकिन तालुकेदार भगवान दीन ने जब माफी दी थी तब उनके यह पुत्र रत्न भूमिष्ठ नहीं हुए थे। मैं तब यह इतिहास नहीं जानता था। मुझे मालूम पड़ा यह सब इन्होंने किया है। पैराग्राफ चेंज। इसके बाद कहा, डबल इनवर्टेड कॉमा, अभी तुम हमारे यहाँ का खाते हो, जब जनेऊ हो जाएगा न खाओगे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने खुद ब खुद सोचा, यह अन्याय है, अगर आज खाते हैं तो कल क्यों ना खाएंगे। पैराग्राफ चेंज। परागा बहन ने कहा, डबल इनवर्टेड कॉमा, बदलू सुकूल के यहाँ महुए की लपसी खाओगे, हमारे यहाँ हलवा नहीं, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। मुझे झेप मालूम दी, मैं हलवा छोड़कर लपसी नहीं खाता, मन में कहा। कुछ दिन बाद जनेऊ हुआ। अब तक इस घर के आदमी आदमी ने बगावत के लिए मुझे तैयार कर लिया था। मैं प्रतिज्ञा कर चुका था कि जनेऊ चाहे तीन बार हो, लेकिन मैं यहाँ भोजन न छोड़ूंगा। इनकी बातें मुझे संगत मालूम देती थी। अगर गांव वाले कभी इनके यहाँ खाते थे तो अब क्यों नहीं खाते। जनेऊ हो जाने के दूसरे रोज पिताजी ने एकांत में बुलाकर मुझसे कहा, अब आज से खबरदार पतुरिया के घर का कुछ खाना पीना मत। मैंने कहा, डबल इनवर्टेड कॉमा, पतुरिया का छुआ तो उनके लड़के भी नहीं खाते पीते, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। पिताजी ने कुछ समझा कर कहा, होता तो मेरी समझ में बात आई होती। उन्होंने डांट कर कहा, डबल इनवर्टेड कॉमा, उसके हाथ का भी मत खाना, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने पूछा, जब तालुकेदार थे तब आप लोग उनका छुआ खाते थे, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। पिताजी ने होठ चबा कर कहा, डबल इनवर्टेड कॉमा, हम जैसा कहते हैं कर, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। यही मैं कमजोर था, दिल से बात न मानी। जनेऊ के बाद दो तीन दिन कहीं न गया। जनेऊ चढ़ाता उतारता रहा। दिन भर में कितने जनेऊ बदलने पड़ते थे। जनेऊ के बाद दो दिन पतुरिया के घर न गया। लोगों की धारणा बन गई, मैं रोक दिया गया और बात मैंने मान ली। पैराग्राफ चेंज। तीसरे या चौथे दिन पंडित फतह बहादुर दुबे कुएं पर नहाने का डॉल कर रहे थे। एकाएक में पहुंचा, मुझे देखकर वह मुस्कुराए। मेरे दिल में जैसे तेज तीर चुभा, बड़ा अपमान मालूम दिया। मैंने उनके पास पहुंचकर कहा, डबल इनवर्टेड कॉमा, भैया पानी पिला दीजिए, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। भैया प्रसन्न हो गए, डॉल से लोटे में पानी लेकर मुझे पिलाने लगे। पिलाते वक्त उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था, मुझे भी खुशी थी जैसे कोई किला तोड़ा हो। उन्होंने गांव के और लोगों को देखकर अपने ब्राह्मणत्व का गर्व किया था। मैंने अपनी प्रतिज्ञा रक्षा की। जिन पर भैया फतह बहादुर ने फतह पाई थी उनमें भी सिर उठाने का हौसला कम न था। वे पिताजी के पास गए और सिर उठाकर कहा, डबल इनवर्टेड कॉमा, आपका लड़का सबके सामने पतुरिये के छोटे लड़के का भरा पानी उन्हीं के लोटे से पी रहा था। अभी नादान है इसलिए इस दफा माफ किए देते हैं, फिर अगर ऐसी हरकत करते देखा गया तो हमें लाचार होकर आपसे व्यवहार तोड़ना होगा, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। पिताजी पहले आज्ञा दे चुके थे, फिर ब्राह्मणों ने बात सभ्य ढंग से कही थी। पिताजी का क्रोध सप्तम सोपान पर पहुंचा। एक तो सिपाही आदमी, फिर हुष्ट पुष्ट, इस पर व्यक्तिगत और जातिगत अपमान, कहा है सबसे अधिक जाति अपमान। जाते ही मुझे पकड़कर फौजी प्रहार जारी कर दिया। मारने वक्त पिताजी इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें भूल जाता था कि दो विवाह के बाद पाए हुए इकलौते पुत्र को मार रहे हैं। मैं भी स्वभाव न बदल पाने के कारण मार खाने का आदि हो गया था। 4-5 साल की उम्र से अब तक एक ही प्रकार का प्रहार पाते पाते सहनशील भी हो गया था और प्रहार की हद भी मालूम हो गई थी। जब पिताजी के बिजली के हाथ छूट रहे थे, मैं चिल्लाता हुआ उनकी पहले की मारे याद कर रहा था। एक दफा जाड़े के दिनों में रात 8 बजे मैंने बगल की बाड़ी में पखाने की हाजत रफा की और यूरोपियनों के कागज का काम बैगन के पत्तों से लिया। फिर भोजन के लिए रसोई जाना ही चाहता था कि भाभी ने रोक दिया। उन्होंने झरोखे से मुझे देख लिया था, पिताजी से यथातथ्य कह दिया। पिताजी पहले गरजे, फिर एक हाथ से मेरी बांह पकड़कर टांग लिया और ताल की ओर ले चले। उसी तरह टांगे हुए वहां उसी तरह पकड़े हुए डुबा डुबा कर नहलाने लगे। --सोचता जा --close कहते हुए जब अपनी इच्छा भर नहला चुके, तब प्रहार के ताप से जाड़ा छुटाने लगे। पैराग्राफ चेंज। याद आया, एक बार एकांत में मैंने पिताजी को सलाह दी थी। --, तुम्हारे मातहत इतने सिपाही हैं, तुम इस राजा को लूट क्यों नहीं लेते। --close पिताजी ने सोचा यह किसी दुश्मन के सिखाई बात है जो उनकी नौकरी लेना चाहता है। मुझे मार मार कर अपने दुश्मन का भूत उतारते हुए पूछने लगे कि किसने सिखलाया है, मैं किसका नाम बतलाता। वह उद्भावना मेरी ही थी। मैं जितना ही कहता था यह बात मेरी ही सोची हुई थी, पिताजी उतना ही संदेह करते और मार कर पूछते जाते थे। मैं कुछ देर बाद बेहोश हो गया था। तब से आज तक मैं नौकर और नौकरी को पहचानता हूँ। इस 42 साल की उम्र में पहले बड़ी मजबूरी में नौकरी की थी, सिर्फ 2-2.5 साल चली। अस्तु। चाटे की ताल ताल पर पिताजी कबूल करा रहे थे, फिर तो मैं पतुरिया के यहाँ का पानी ना पीऊंगा। मैं स्वीकार कर रहा था। किसी तरह छुट्टी मिले। पैराग्राफ चेंज। 2-3 दिन का समय दर्द अच्छा होने में लगा। एक दिन मैं बाहर निकला कि दुर्भाग्य से फिर वैसा ही प्रकरण आ पड़ा। गांव के मुखिया क्रोध से भरे हुए गांव के लोगों की रक्षा के विचार से गए और गंभीर होकर नाम लेते हुए कहा, --, क्या तुम दूसरों का धर्म लेना चाहते हो। आज तुम्हारा लड़का पतुरिये के लड़के से ले लेकर भुने चने चबा रहा था। आज से गांव के ब्राह्मणों में तुम्हारा व्यवहार बंद है। --close आज की मात्रा पिताजी ने में उनसे अधिक थी। फिर मुखिया ने ये बातें डांट के साथ कही थी। व्यक्तिगत बात को व्यक्तिगत रूप देते हुए उन्होंने कहा, --start तू हमारा पानी बंद करेगा। तू पासी का है, गांव में जा और पूछ। तेरी लड़की पटने में 1-2-3-4 कर रही है। हम अपनी आँखों देख आए हैं। माना कि चौधरी भगवान दिन का काम बेजा था, लेकिन उनके सामने कहते नहीं। जब तक वह जिए उनके लड़कों की अंग विशेष का उल्लेख कर कहा धो धो कर पीते रहे। अब सब छंगे के बने फिरते हो। शहर में होते तो देखते हम कितने आदमियों का बम्बे का पानी और डॉक्टर की दवा छुड़ाते हो। यहाँ क्या नाम के करने की को कौन सा काम और गाने को छीता हरण। --close मुखिया का थूक सूख गया, विशेष अस्वस्थ हो जैसे धीरे धीरे लौटे। पिताजी ने गंभीर स्नेह स्वर से पुकारा, --, अरे ए मुखिया, तमाकू खाए जाओ। --close मैं अब विकास पर हूँ, इन मेरी आँखों में धूल झोंकी जा रही है, मैं ज़रूर कुल्ली का साफ आसमान देखूंगा। चंद्रिका मेरे साथ कर दिया जाएगा तो उस बेवकूफ़ को एक काम देखकर अलग कर देना कौन बड़ी बात है। कहूँगा अत्तार के यहाँ से रूह ले आ मालिश के लिए, रूह लेकर बड़े रास्ते पर खड़े रहना, हम वहीं मिलेंगे। देखा जाए ये लोग कुल्ली के नाम से क्यों कान खड़े करते हैं। इसी प्रकार अपना आगे का कार्यक्रम तैयार कर रहा था कि बैठक का दरवाज़ा खुला। भीतर आऊं, close। विनीत सभ्य कंठ की आवाज आई। मैं समझ गया कुल्ली है। start। आइए, close। मैंने उसी सभ्यता से कहा। कुल्ली एक घंटा पहले आए थे, बहुत से बने ठने बालों से तेल जैसे टपकने पर ही चिकन का धुला कुर्ता, ऊपर बास्कट, हाथ में बेंत, गर्मी के दिनों में भी पैरों में मोजे, विनीत अप्रतिभ दृष्टि और श्रीहीन मुख, बात बात में कालिदास के शिप्रावतः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारा, close। तब चाटुकती अच्छी लगती थी क्योंकि उसका दर्शन न समझता था, कालिदास का यौन विज्ञान भी नहीं समझता तो उस दृष्टि चेहरे और बातचीत से ही खात्मा कर दिया होता। कुल्ली ने बड़े अदब से इलायची दी। मैंने ले ली, कहा आप घंटे भर पहले आए, close। कुल्ली ने उत्तर दिया, पांडे जी का मंदिर भी रास्ते में देख लेंगे, close। सासू जी पहले से सतर्क थी, फाटक बंद कर उसी दालान में अपना पलंग डलवाया था और दोपहर भर कुल्ली का रास्ता देखती रही। चंद्रिका को अपने ही दालान में सुलाया था, दोपहर भर उससे हम लोगों की बात पूछती रही, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन कैसे हैं, घर में किसका स्वभाव अच्छा है, आदि आदि। पैराग्राफ चेंज। चंद्रिका बहुत अर्थों में बेवकूफ था, उससे घर की कोई भी बात मालूम की जा सकती थी। थोड़ी देर में देखता हूँ अपने डंडे पर अच्छी तरह तेल चुपड़े हुए चंद्रिका बैठक के भीतर आया, साथ चलने के लिए कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार होकर। चंद्रिका को देखकर कुल्ली कुछ सहमे से फिर उससे कहा, एक लोटा पानी हमारे लिए ले आओ, close। चंद्रिका पानी लेने गया तो मुझसे बोले, क्या यह भी साथ जाएगा, इसका कौन सा काम है, close। कुल्ली के कहने से मेरा कौतूहल बढ़ा। मैंने कहा, साथ जाना उसका फर्ज है, लेकिन मैं उसे सौदा लेने के लिए दूसरी जगह भेज दूंगा, close। कुल्ली ने अपने ढंग से समझा। कुल्ली ने सोचा, मैं उनका इरादा समझ गया हूँ और उनकी अनुकूलता कर रहा हूँ, मैं वैसा ही आदमी हूँ जैसा उन्होंने सोचा था। पैराग्राफ चेंज। चंद्रिका पानी ले आया, दो एक छींटे मुंह पर मार कर कुल्ली ने कहा, बड़ी गर्मी है, इतना ही आया, ब्रह्मांड फट रहा है, close। चंद्रिका कुल्ली को देख देख कर आजमा रहा था कि एक झपट होने पर आसमान दिखा सकेगा या नहीं। मुंह पर छींटे मारकर दो एक घूंट पानी पीकर कुल्ली ने कहा, double inverted comma, अब देर ना कीजिए, close। मैं घर के भीतर चला, फाटक के पास जाते ही मालूम हुआ सारा घर सांस साधे हुए है। फाटक खोलने पर सासू जी मिली, स्तब्ध भाव से मुझे देखती हुई, उनकी बेटी उनकी आड़ में। मैं सीधे अपने कमरे में गया, बाल कंघी किए, कपड़े बदले, जूते पहने, फिर छाता लेकर बाहर निकला। सासू जी रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, अपने यहाँ का एक डंडा देती हुई बोली, double inverted comma, इसे भी ले लो, जंगल का रास्ता ठहरा। मैंने कहा, double inverted comma, ज़रूरत पर मैं छाते से काम ले लूँगा, close। सासू जी की बेटी हंसी, मैं बाहर निकला। पैराग्राफ चेंज। मैं फिर बैठक में न घुसूं, इस विचार से कुल्ली दरवाजे के पास आ गए थे, मेरे निकलते ही निकल पड़े। कुल्ली के पीछे चंद्रिका भी निकला। कुल्ली ने उसे घृणा से घूरा पर कुछ कहा नहीं, रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। मैं भी बढ़ा, मेरे पीछे चंद्रिका। चंद्रिका का रहना कुल्ली को अखर रहा था। मुझे सासू जी की बात याद आ रही थी कि कुल्ली मुझे यहाँ से ले जाना चाहता है। उसका उद्देश्य किला दिखाना नहीं, पर उसका उद्देश्य क्या है जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। इसी समय हम लोग बड़े रास्ते पर आए। कुल्ली ने एक दफ़ा मेरी तरफ देखकर इशारा किया कि अब इसे विदा कर दो। वह इशारा मुंह और आँख का बनना मुझे बड़ा अच्छा मालूम दिया। दो एक दफ़ा ऐसे इशारे और हूँ, देखूँ इस अभिप्राय से चंद्रिका को लिए रहा। कुल्ली का उत्साह टूट गया, चाल धीमी पड़ गई, पर आशा से हृदय बांध कर पाणे जी के शिवालय की तरफ चले। कुछ दूर पर शिवाला मिला। चारों ओर घूमकर हम लोगों ने मंदिर देखा, देवता के दर्शन किए, फिर मंदिर की चित्रकला देखते रहे, फिर बैठकर कुछ देर विश्राम करने और पुजारी जी की बातचीत सुनने लगे। ज्यों ज्यों देर हो रही थी कुल्ली का पेंट ऐंठ रहा था। पुजारी जी की बातचीत चल रही थी कि उस साल भगवान का जन्मदिन मुहर्रम के दिन पड़ा, तब ताजिए उठ रहे थे। पुजारी भगवान की आरती कर रहे थे, आरती में खूब बाजे बज रहे थे। इंस्पेक्टर साहब के पूछने पर पुजारी जी ने कहा कि जिनके यहाँ आदमी मरा और कहीं लाश का पता नहीं, उनके यहाँ तो ये सब और पुजारी जी के यहाँ आज भगवान पैदा हुए। कहता है उसी दिन पुजारी जी की स्त्री के लड़का हुआ था, तो यहाँ कितना उछा होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। कुल्ली ने बीच में टोकर कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, महाराज अभी और जगहें देखने हैं, कहकर उठ खड़े हो गए। मैं पुजारी जी की बात खत्म होने पर उठा, तब तक कुल्ली सैकड़ों मर्तबे निगाह से मुझे उठाते रहे। मैं देखता और सुनता रहा। शिवालय के बाहर निकलकर कुल्ली ने फिर इशारा किया। इस बार कुल्ली का इशारा चंद्रिका ने देख लिया, लेकिन बात उसकी समझ में ना आई। उसने सोचा था आगे चलकर कुल्ली को मारने की नौबत आएगी, पर इस इशारे में उसे काफी स्नेह दिखाई दिया। इसी समय आतार के यहाँ से मैंने रूह खरीद लेने की आज्ञा दी। चंद्रिका असमंजस में पड़ गया। उसे सासू जी की आज्ञा साथ न छोड़ने के लिए थी। सासू जी की बात याद आई, साथ न छोड़ना, दोस्त दुश्मन कौन कैसा साथ रहता है। लेकिन कुल्ली को दुश्मन में शुमार न कर सकने के कारण उतरे गले से कहा, मैं भी किला देख लेता, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। कुल्ली ने कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्या आज से किले का आना बंद हुआ जाता है, कल देख लेना, कहीं मालिक की हुक्म अदूली की जाती है, जाओ रुख खरीद लो, वह आगे दुकान है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चंद्रिका मेरी तरफ देखने लगा, मुझे भी उत्साह था, कहा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, खरीद कर यहाँ यहीं या बड़े रास्ते पर रहना, हम घंटे भर में आ जाते हैं। चंद्रिका मुड़ा। कुल्ली ने उत्साह से सीना तानकर गर्दन उठा दी। मुझे भी यह मुद्रा अच्छी लगी, बंगाल में ऐसी अंग भंगी देखने को न मिली थी। पैराग्राफ चेंज। हम ढाल से नीचे उतरे, किला देख पड़ने लगा। मिट्टी के दो काफी ऊंचे टीले हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, इन्हीं पर इमारत थी। इस समय केवल एक 12 दरी दूर से देख पड़ती है। किले के चारों तरफ ईंटों की 4 दीवारी थी, जगह जगह मालूम देता है। ईंटें कहीं कहीं बहुत बड़ी हैं, बाकी इमारत की ईंट लखनऊ की जैसी कागज थी, लेकिन बहुत पकी हुई, मजबूत। घुसते एक फाटक मिला, मजे का, इन्हीं ईंटों का बना था। फाटक का रास्ता कागजी ईंटें गाड़ कर बनाया हुआ, नीचे से ऊपर को चढ़ता हुआ गौ घाट की तरह का। दूर से दृश्य अच्छा मालूम देता है, ऊपर से और अच्छा। हम लोग फाटक से होकर चढ़ते हुए किले के भीतर गए। जाने पर प्राचीनता का नशा जकड़ लेता है, जिसकी स्तब्धता दूर इतिहास काल में ले जाकर एक प्रकार का प्रगाढ़ आनंद देती है। कुल्ली ने दूसरे टीले की तरफ हाथ उठाकर कहा, वह रनवास है, बैठ गया है, दो एक जगह से मालूम देता है। नीचे की दलाने देख पड़ती हैं, एक तहखाना भी है, लोग कहते हैं यहाँ बड़ी दौलत है। फिर आगे बढ़ा, एक जगह एक मस्जिद थी टूटी हुई। कुल्ली ने कहा, यह मस्जिद है, शाह का कब्जा होने के बाद बनी थी, इसलिए दूसरी इमारतों के मुकाबले नई मालूम देती हैं। सामने यह सिपाहियों के रहने की जगह थी, अब कुछ कब्रें हैं। देखिए, यह देखिए, उस फाटक से उस बारह दरी तक कई फाटक थे, ड्योढ़ियाँ थीं, सिपाही पहरे थे। जगह देखते आइए, धीरे धीरे कैसी ऊंची होती गई है। बारह दरी के पास किला काफी ऊंचा है।